फिर अगली कैटेगरी है शोहदा की, शहीद। तो शोहदा का लफ्ज शहीद से है, बुनियादी मानी क्या था? पक्का हुआ, हाजिर, गवाह, अल्लाह की राह में जान देने वाले, सदाकत ईमान की शहादत, जिंदगी के तर्ज अमल से देने वाले, और आखिरकार जान देकर ईमान का सबूत देने वाले। फिर बोलती हूँ, शुहदा शहीद की जमा, बुनियादी मानी इसका है गवाह, मतलब क्या है? अल्लाह की राह में जान देने वाले, ये तो आखिरी दर्जा, ये तो कभी बाद में होता है। जिंदगी भर सदाकत ईमान की गवाही जिंदगी के तर्ज अमल से देते हैं। शहीद की जिंदगी बताती है कि ये गवाह है अल्लाह के दीन का, उसकी शादी बताती है, उसकी मौत बताती है, उसके घर का कल्चर बताता है, उसके बच्चों को देख के पता चलता है ये शहीद के बच्चे हैं। वो ज़मीन पे चलता फिरता शहीद होता है, और अगर इसके ऊपर मज़ीद बातें समझने लगे ना तो दिल और भी खुल जाता है, क्योंकि फरीज़ा शहादत अलन्नास, कुरान ने इसको बहुत एलेबोरेट किया। ये ज़िंदगी में अपने अमल से अल्लाह का नुमाइंदा होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सब पढ़ाने के बाद मिली है ना, वो शहादत अलन्नास है, फरीज़ा शहादत अलन्नास। दुनिया की ज़िंदगी में ये गवाही दावत, तबलीग और अमली शहादत के ज़रिए से होती है, और क़्यामत के दिन अल्लाह की अदालत में ये पता क्या होंगे, यानी आपके वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाए, अल्लाह की अदालत में ये इस्तगासे जब दायर होंगे ना, तो ये वहाँ गवाह बनकर विटनेस होंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस, के अल्लाह हमने तेरा पैगाम इन्हें पहुँचा दिया था। और ये मैं पैगाम कुरान में कई जगह आता है, और दो मुकाम बड़े अहम हैं कि अल्लाह के नबी हम पर गवाह होंगे और हम बाकी लोगों पर गवाह होंगे। लिख लें, शायद फ़ायदा हो जाए। लोग कहेंगे कि नबी जो पैगाम आपने दिया था हमने उसको आगे पहुँचा दिया। एक मुकाम है सूरत हज का बिल्कुल एंड, 78 आयत है, वजाहिदु फिल्लाहि हक्क जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन कब्लु वफी हाजा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम। पहला दर्जा, रसूल तुम पर गवाह हो, व तकूनु शुहदा अलन्नास, और तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। तो ये उम्मते मुस्लिमा का वसफ था जो क़्यामत के दिन तक चलेगा। और आप देखते हैं कि सूरत हज में ये है, और दूसरा मुकाम है सूरह बकरा 143, दूसरे पारे की दूसरी आयत, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासी व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी ये वो वक्त है, ये उस तरह की बातें हैं, उम्मत वसत बना दिया, तो लिखिए शहीद होने का ताल्लुक दुनिया से भी है और आखरत से भी है। आखरत में वही लोग अल्लाह के गवाह, देखिए ना, आप किसी को गवाही के लिए बुलाएं और वो आ जाए, आप कितने उसके शुक्रगुजार होंगे। अल्लाह बुला रहा है आपको, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों आओ, जरा ये गवाही देना, ये कौम नूह तो इनकार कर चुकी और ये फलां इनकार कर चुका, क्या टॉर होगा वहां आपका। आज तो दुनिया में अल्लाह का काम लोगों को लगता है फारिग लोगों का काम है, वेले और कोई काम ही नहीं। हमने भी मुंगरे भी बनाने हैं, फिर हमने पालक भी काटनी है, फिर आज तो मैंने सोचा था गुड़ वाले चावल भी साथ बना लूंगी। करिए ये काम, तत्वों से करिए, खुशी से करिए, पर मैनेज कीजिए। इतना ना बच्चों को खिलाएं कि उनको शहादत का फरीजा ही भूल जाए, दुनिया उनकी इतनी ना बढ़ा दें कि उनको हर वक्त बस्ते उठा के इधर से उधर भेज रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि तुमने साइंस पढ़ के करना क्या है, तुमने मेडिसिन पढ़ के करना क्या है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये गवाहियां दो दफा, दुनिया में दावत और तबलीग और इतमाम हुज्जत, और क़्यामत के दिन इसका ज़हूर होगा जब सब के सामने खड़े किए जाओगे, कोर्ट कायम होगी और तुम वहां गवाहियां दे रहे होगे। इसी तरह इसी बात का इशारा सूरत नहल की आयत 89 में, नोट कर लीजिए, व यौम नबसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजी ना बी का शहीदन अला हाउलाई। और इस दिन का तसव्वुर कीजिए नबी, जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ग्रोह गवाह बनाकर खड़ा करेंगे, इन्हीं में से, और आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे इन पर, किन पर? अहले अरब पर, यानी अरबों पर आप गवाह बनेंगे, और आपके बाद बाकी लोगों पर आपकी उम्मत गवाह बनेगी। हमें तो ये समझ ही नहीं आती बातें। हम कहते हैं कोई वजीफा बताओ ना, कोई दुरूद बताओ ना, कोई जरा बताओ मैं क्या करूं, वो भी बात अलग है। लेकिन ये गवाहियों के बगैर उम्मत आज रुल रही है। ये आज के पूरे माशरे के बिगाड़ का रूट कॉज क्या है कि आज उम्मत मुस्लिमा शहादत के फरीजे से उतर गई। एक बंदा सिर्फ अपने ड्राइविंग सीट पे गलती करे तो गाड़ी में बैठे 5 लोग खतरे में होते हैं। अगर जहाज चलाने वाले से जरा सी गलती हो जाए तो 200-300 लोग खतरे में होते हैं। उम्मत मुस्लिमा के 2 बिलियन लोग आज गलती करते हैं, पूरी दुनिया की कई बिलियन के लोगों को खतरे में डाला हुआ हमने। हम तो गोलियां और तलवारों का रुख गैरों की तरफ करते हैं ना कि वो है बिगाड़ की वजह। सिरा हमारे हाथ में है, जुन के पास छुरी होती है ना, उसका एक सिरा पहले है और एक है जिधर से काटते। ठीक है, गैर मुस्लिम काट रहा है अगर आज इंसानियत को, अगर तो उसका जो हैंडल वाला सिरा वो मुसलमान के हाथ से छुटा हुआ है, कसूर हमारा है। इसी तरह से आप आयत 41 सूरह निसा कई बार सुन चुके हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह अनहु के नाते से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे। कौन सी आयत है वो? फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिकाला हाउलाई शहीदा। फिर उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे और आपको भी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के खिलाफ बतौर गवाह खड़ा करेंगे। और याद रखिए कि जब गवाह लफ्ज के साथ अला आता है ना, जैसे इस आयत में जी ना बी का अला हावलाई, तो ये अगेंस्ट के लिए आता है, मुखालफत का सिला है ये। वहां गवाही उनके खिलाफ देनी पड़ेगी। अगर आज कोई इस पोजीशन में हो, कह दे कि मैंने अगर अल्लाह का पैगाम देने लगा हूं तो दूसरे लोग उसके सर के बालों को आ जाते हैं ना। और हकीकत ये है कि अगर कोई कौम इस पोजीशन में हो कि ये कह सके कि अल्लाह तेरा पैगाम हम तक तो आया ही नहीं, तो इस चीज का इन्हें अल्लाह के यहाँ क्रेडिट मिलेगा ना। देखे ना, पोस्टमैन की मिसाल समझाई थी कि लेटर तो मिला ही नहीं तो बिजली वाले बिजली क्यों काटेंगे, गलती पोस्ट ऑफिस वालों की थी या ईमेल स्पैम में चली गई। आज लिखी ये बहुत बड़ी बात बताने लगी हूं। आज उम्मते मुस्लिमा की इग्नोरेंस दुनिया के गैर मुस्लिमों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है। वो कल साफ मुकर जाएंगे कि अल्लाह किधर आए, ये तो मेरे हमसाए में रहता था फला, मुसलमान था वो, जुमा पढ़ने भी निकलता था और उसके हाल उलिये से पता लग जाता था, इसके रोजे आए हुए हैं, बड़ी रौनके थी, पर मेरे पास तो कभी ना पहुंचा। तो लिखिए, इग्नोरेंस ऑफ ला इज नो एक्सक्यूज। दुनिया का कायदा है, जबकि अल्लाह के यहाँ इससे ऑपोजिट है। अल्लाह के यहाँ उन लोगों को रियायत मिलेगी जिन तक बात नहीं पहुंची। और आज ये लफ्ज लिख लें इस कॉम्पैक्ट से कोर्स के अंदर, लफ्ज काफिर और गैर मुस्लिम में ये बुनियादी फर्क है। आज जब दुनिया के लोगों को देकर गैर मुस्लिम कह सकते हैं, काफिर नहीं कह सकते। आपको मैं पानी पेश करूं, आप कहते हैं नो थैंक्स, मुझे नहीं लेना। ग्लास क्या है इस्लाम? आप किसी गैर मुस्लिम को पूरे इस्लाम की खूबसूरती दिखा दें अपने रवैये से, इस्लाम की दाव से, फिर वो कहता है नो आई एम कंफर्टेबल विद माई रिलीजन, देन ही और शी विल बी काफिर। तो आपने ये ग्लास दिया ही नहीं, खुद ही पी गए, पी पी गए, बल्कि जमजम डाल डाल के पी रहे हैं इन ग्लासों में। जाहरी तौर पे तो मुसलमान बड़ी नेकियां और इबादात के शौक में अभी भी दूसरों तक नहीं दे रहे, और अभी तक हमारी टीमें ही नहीं तैयार हो रही जो अपनी जुबान वालों को पढ़ पढ़ा सके, तो दूसरों तक कौन पहुंचेगा? जब तक आपके इस मुल्क में फ्रेंच जुबान में कुरान का ये मैसेज जो इस वक्त आप उर्दू में सुन रहे हैं नहीं पहुंचेगा, मुसलमान नहीं बचेंगे। तो जिनके हाथों में रिसोर्सेज हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? नाजरा अलिफ बात आ पढ़ो। और जिस दिन वो बिरबिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास होता है तो सब काम खत्म। माँ कहते शुक्र है मुर्दा बख्शा गया, कल अल्लाह को दिखाएंगे बच्चे को कुरान पढ़ाए। वो मौलवी साहब को इधर भी जोड़ा तो देते ही होंगे खदर खुदर का, कोई एक रस्में बिस्मिल्लाह के बाद आमीन भी हो जाती होगी। हम बच्चे के कुरान पूरा होने के बाद सोचते हैं काम खत्म, हालांकि उस दिन काम शुरू होता है। जॉब का साइन हो जाए, लेटर मिल जाए, तो क्या उसके बाद खत्म हो गया काम? अब रोज सुबह 8 बजे उठ के जाना पड़ेगा। और मैं किसी एक मुल्क के बारे में सुन रही थी, मुस्लिम मुल्क है, सुबह 5 बजे उनके ऑफिस खुलते हैं, 3 बजे छुट्टी। दैट इज द टाइम। आज उम्मत मुस्लिमा सुबह की बरकतों से महरूम होके 11 बजे घर से निकलते हैं और जोहर पढ़ के दुकानें खुलती हैं हमारे अपने बहुत बड़े शहर में। पहले जाने वाला मुंह देख रहा होता है कि मैं करूं क्या सुबह के वक्त का, और घर के 90% लोग सो रहे होते हैं, मेहमान परेशान है, मेज़बान सो रहे हैं। मासियों को कह देते हैं इनको नाश्ता करा देना, अच्छा भला खूब 10-12 चीज़ें टेबल पर लगा देंगे, मेज़बान नहीं है, क्योंकि वो उम्मत जो फजर के बाद सो गई उसको क्या मिलना है। मेरी सर दर्द है सुबह का सोना, लेकिन आज हो रहा है। फिर कहते हैं काम नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं है, तो वहां बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा उन लोगों को जिन तक फरीजा शहादत हक के जरिए मुसलमानों ने अपना काम नहीं किया, उजर हो गया। और आप लिख लीजिए सूरत निसा 165, रुसुलन मुबशरीन व मुनजरीन लियल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा। हमने अपने रसूलों को मुबशिर बनाकर भी भेजा, नज़ीर बनाकर भी भेजा, ताकि रसूलों के आने के बाद कोई उजर बाकी ना रहे। तो याद रखिए ये उजर तमाम हो रहे हैं आपके मेरे ऊपर, कि अल्लाह तो हमसे किस बात का हिसाब ले रहा है, हम तक तो तेरा पैगाम भी नहीं पहुंचा। तो जरूरत है इस बात की कि जब किसी को आपने काम का कहा ही नहीं तो वो ना करेगा, तो गुस्सा किस पे आना है? उस पे आएगा जिसको आपने कहा था फलां को कह दो ये काम कर दो। हमारे सारा गुस्सा उस वक्त दूर हो जाता है जब अगला कहता है कहाँ मुझे तो नहीं पैगाम मिला, वो कहता है बच्चे को कह के भेजा था, माँ को बता देना कि रात को 4 लोग आ रहे हैं खाने पे। अब वो बच्चे की सख्ती आएगी, माँ की बचत हो जाएगी। जिनको पैगाम नहीं पहुंचा उन पर गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पहुंचाया सारा गजब गुस्सा इस वक्त भी लग रहा है अल्लाह का उम्मत मुस्लिमा पे, वो किसी भी रंग में, उसमें फिर दूसरे भी पहुंचे। तो आज हम बड़े ठंडे ठंडे जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। और आप सूरत अल अराफ में देखें ना, शुरू में बिल्कुल आयत नंबर 6 है, फलन सलन उर्सिला इलैहिम वलन सलन मुरसलीन, हम लाजिमन पूछ कर रहेंगे, श्योर श्योर डेफिनेटली, यानी आपको इस टोन से लगता है आज खैर नहीं। अब्बू बड़े गुस्से में कहते हैं आज मैं घर आ लूं, जरा मैं तुम सबको पूछता हूँ, उनसे भी पूछेंगे जिनकी तरह रसूलों को भेजा गया, और हम रसूलों से भी पूछ लेंगे, क्योंकि अल्लाह को पता है रसूलों ने तो काम किया हुआ, वो बच जाएंगे, वो कह देंगे जी अल्लाह जी कर दिया था, लेकिन जिन तक पहुंचा और उन्होंने नहीं माना या जिन्होंने नहीं पहुंचाया सख्ती उनकी आ जाएगी। और यही वो जुमले थे अला हल बल्लग्तु, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हज्जतुल विदा का खुतबा बीसियों बार आपने ये बात सुनी होगी, साहबा ने कहा इन्ना नशहदु अन्नक कद बल्लग्तर रिसाला वद्दैतल अमाना व नसख्तल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा। ये 5-6 लफ्ज़ लिख लें, आज आपके मेरे लिए भी ये हुज्जत हैं। साहबा कराम आम तौर पे बोलते ही नहीं थे अल्लाह के नबी के सामने, आम तौर पे आप सवाल करते हैं ना आज कौन सा दिन है, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। हालांकि सबको पता था नौज़िलहज है, ये कौन सा मुकाम है, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हालांकि सबको पता है अरफा अरफात के मैदान में, आमतौर पर नहीं बोलते थे। ये मौका जब आपने उसी के चंद घंटे के बाद खुतबे के बाद पूछा अला हल बल्लग्तु, क्या मैंने पैगाम अल्लाह का पहुंचा दिया, तो जरा साहबा के जुमले गिनिए, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लग्तर रिसाला, दूसरा व अद्दैतल अमाना, तीसरा व नसख्तल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा। हम गवाह हैं अल्लाह के रसूल कि आपने यकीनन फ़र्ज़ रिसालत अदा कर दिया है और अमानत का हक अदा कर दिया है और उम्मत की नसीहत की जिम्मेदारी अदा कर दी, और आपने गुमराही के तमाम अंधेरों को जायल कर दिया। आज उम्मत ने ये काम किए, क्या हमने अंधेरों को जायल किया? क्या आपने उम्मत की नसीहत की या खैरख्वाही की, अमानत का हक अदा किया, और क्या हमने फरीजा कारे रिसालत अदा किया? ये तो कल पूछना पड़ेगा, और आज ये अल्लाह पूछ रहा है। अल्लाह मुसलमानों को दुनिया में ये जो इस वक्त एक रगड़ा दे रहा है ना, और औलादों की तरफ से जो रगड़ा मिल रहा है ना, ये असल में वो सफाई हो रही है। जैसे जंग लग जाता है ना तो उसको फिर जल्दी से स्क्रब करो और उसके ऊपर कुछ मान लगाओ ताकि जंग उतर जाए, ये दुनिया में सफाई हो रही है। मुश्किलों में डालकर अल्लाह गले में जान अटका के मुसलमानों की दुनिया से फिर जान लेता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी तो जिम्मेदारियां अदा करके ये खूबसूरत टाइटल ले गए कि हाँ हाँ साहबा ने कह दिया, आपने पूछा दिया, अमानत दे दी, जिम्मेदारी दी, आपकी मेरी गवाही कौन देगा? क्या आप देंगे गवाही मेरी या मैं आपकी दूं? आज उम्मत के अमूमी रवैये अपने खानदान को सामने रख कर देखिए, क्या हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि हमने नसीहत का हक अदा कर दिया, अमानत का हक अदा कर दिया? हम एक दफ़ा काम कर ले, हम कहते हैं बस छोड़ो कोई नहीं आता, चुप करके बैठ जाओ, कौन बुरा बने, कौन मेहनत करे? तो असल बात शहादत का मुकाम ये है। फिर एक और जुमला लिखिए, सिद्दीकियत और शहादत के मरातब अभी भी खुले हैं। अहले ईमान में मुख्तलिफ किस्म की शख्सियतें हैं, कुछ एक्स्ट्रावर्ड और कुछ इंट्रोवर्ड हैं, कुछ गौर व फिक्र और सोच विचार करने वाले सलीमुल फितरत लोग हैं, रकीकुल कल्ब हैं, वो दिल के नरम हैं। ये सारी खूबियाँ अबू बकर में थी, ये तो सिद्दीकियत के मिजाज पे जाएंगे। और जिनका मिजाज ऐसा नहीं, वो कम से कम शहादत के मर्तबे पे पहुँचेंगे। लेकिन आज भी ये दोनों रास्ते उन लोगों के लिए खुले हैं जिन्होंने, अब ये जुमला लिख लें, किन्होंने, किसके लिए खुले हैं सिद्दीकियत और शहादत के दर्जे? जिन्होंने आपने, मैं डिक्टेट करा रही हूं ताकि आप लिखें, जिन्होंने अपने बातिन से माल की मोहब्बत का ब्रेक हटा दिया। सूरत वहदीद में आप देखें ना, तो मुसद्दकीन और मुसद्दकात के बाद ये सारी चीजें आई थी, सदका करने वाले और सदका देने वाले, यानी जिसके दिल से माल की मोहब्बत निकल गई है ना, वो इंशाल्लाह पहुंचेगा सिद्दीकियत के तक, पहुंचे ना पहुंचे शहादत की गवाहियां देता हुआ तो जाएगा। इसके अलावा जिनके अंदर अभी भी माल की मोहब्बत का ब्रेक लगा हुआ है, ना उनकी कोई तरक्की होनी है, ना मर्तबा मिलना, ना उनके लिए तरफो है और ना तरक्की है, वो बस नाम के मुसलमान हैं, चल चलाओ का मामला चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने दिल से माल की मोहब्बत को खुरच दिया, फिर नए सिरे से ईमान लाया, तो वो आज भी मर्तबा सिद्दीकियत पर फाइज हो सकता है। ये सारी बातें जिन्होंने हमारे साथ सूरह हदीद की आयत 18-19 में गुजर चुकी है। और यहाँ ये भी बात लिख लीजिए, आज तो इसके हालात नहीं है, लेकिन एक मुखालता आ जाता है कभी कभी ऐसे मौजूद को सुनने में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रहे। मसलन जिस शख्स को नबी की दावत ब्राह रास्त पहुंची, जैसे सहाबा को पहुंची, वही सिर्फ मुकाम सिद्दीकियत पे आ सकता है। कुछ लोग कहते हैं अकायद में जो लोगों ने बिगाड़ डाला ना, उसमें से कोई एक फिरका, बल्कि एक से ज़ायद फिरके ऐसे हैं, वो कहते हैं नो, ख़त्म, सिद्दीकियत का डोर क्लोज। ये जैसे दो दरवाज़ा बंद कर दें जी, क्लास शुरू होगी, अब लॉक नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि जिसने ब्राह रास्त सुना हुआ है, तो फिर वो मेहनत क्यों करे? आज उम्मत सोई पड़ी है, इसलिए कहते हैं हमने कौन सा सिद्दीक बनना है। देखिए ना, अगर आप पहले ही कह दें किसी ने फर्स्ट नहीं आना, सब बस पास होंगे, तो कौन मेहनत करेगा? वो गलत सोच है। लिखिए, ये कहना कि नबी से ब्राह रास्त सुनने वाले वो ही थे और हम में से किसी को नहीं मिलता, हम तो नस्ली तौर पे मुसलमान हैं, अकीदतन ईमान हमारे पास है, लेकिन शौरी ईमान नहीं, हम क्या करें ऐसा करें, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप इसकी दलील मांगिए, इतनी बड़ी बात मैं आपको बगैर दलील के कैसे कह दूं? तो सूरत फुरकान का आखिरी रुकू इबादुर्रहमान आयत 68 से 70 में पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया अल्लाह सुबहान ताला ने कि इंसान पिछले गुनाहों पे माफ़ी मांगे, तजदीद ईमान करे, और उसके बाद एक से एक काम करता जाए, अल्लाह ताला उसके पिछले माफ़ करके उसको बेहतरीन लोगों के साथ ले जाएगा। तो तजदीद ईमान, तजदीद तौबा और तजदीद अहद, ये तीन लफ्ज़ लिख लीजिए। ईमान को नया कीजिए, तजदीद तो समझते ना, रीन्यू कराना, आपका पासपोर्ट पुराना हो गया, रीन्यू करा रहे, आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो आउटडेटेड हो रहा है, आप लोग उसको दूसरी तरफ ले लें, तो मैदान खुला है, असल में आपको होप दी जा रही है एंड पे। नए सिरे से उठिए, आज भी मर्तबे सिद्दीकियत तक पहुंचने का रास्ता खुला है। हाँ, एक दरवाज़ा बंद है, उसको कोई खटखटाए भी ना, और वो नबूवत का दरवाज़ा है। पहले भी वो वाहबी था, कस्बी नहीं, अब तो मुस्तकिल लॉक है, बल्कि दरवाजे की जगह दीवार बना दी अल्लाह ने। कोई किसी नबी की नबूवत की दावा करने वाले को कहना सबूत दिखाओ, तो वो भी काजिब है, आपको पता है? ये हो ही नहीं सकता, तो तुम मानते कैसे हो? तो ज्यादा ज्यादा फिर आप और मैं जिस मर्तबे पे जा सकते हैं, वो सिद्दीकियत और शहादत का। अपनी तबीयतों को चेक कीजिए, और इसके लिए कोशिश कीजिए। सालेहीन का दर्जा बेस लाइन, बॉटम लाइन, इससे नीचे गए तो अनम तालेहिम से गुजर गए। हसन रफीका की वो अच्छी सिद्दीकियत, वो कहते थे इन द मलीक इन मुक्तदर, उन महफिलों में आपका मेरा फिर कोई उठना बैठना नहीं होगा जहाँ अल्लाह और के नबी और फरिश्ते होंगे और अल्लाह के साथ महफिलें सजी होंगी। हर बंदा तो नहीं आ सकता ना बड़े लोगों के पास, दुनिया में कितनी पहरे होते हैं, तो अल्लाह की शान, अल्लाह तो बहुत बड़ी ज़ात है। ज़रूरत इस बात की कि आज कीजिए, ये मुश्किल घाटियाँ अबूर कर लें, थोड़े ही दिन की रह गए, आपको मुझे क्या पता हमारी ज़िंदगी के कितने दिन रह गए हैं। माल की मोहब्बत खुर्चिए, ईमान के जेवर से आरास्ता हों, और अगर कोई नेकी कर चुके हैं ना तो उसको ज़ाया ना करें। कभी कभी हम नेकियां करके ज़ाया भी कर देते हैं अपनी लफ्ज़ों से, बातों से। यहाँ 2 घंटे घंटा बैठते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, जाते हुए कोई एक जुमला ऐसा कच्चा बोल जाते हैं जिससे सारा ही असर ख़त्म हो जाता है। बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर रोकती हूँ इस सोच के साथ कि शहादत का मुकाम या इसके बारे में जानना और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना भी बहुत है जो हम सीख चुके हैं। शहीद वो शख्स जो दलाइल और बराहीन के साथ दीन की सदाकत पर शहादत दे और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हुआ मारा जाए। जो मुसलमान जुल्मन कत्ल किया जाए वो भी शहीद है। सूरत हदीद की आयत 19, वल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रुसुलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीकून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। इस आयत की तफसीर सुन लें, बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह इससे मिल जाएगा। फिर अगली रिवायत हमारे पास सही मुस्लिम की है, 4941, अबू हुरैरा रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम शहीद किसको समझते हो? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, जो अल्लाह की राह में मारा जाए वो शहीद है। आपने फरमाया, जब तो मेरी उम्मत में फिर शहीद बहुत कम होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फिर शहीद कौन कौन लोग हैं? आपने फरमाया, जो अल्लाह की राह में मारा जाए वो शहीद है, जो अल्लाह की राह में मर जाए यानी हज में या जिहाद करते हुए वो भी शहीद है, ताउन की वबा में जो मरे वो भी शहीद है, और जो पेट के आरजे से मरे वो भी शहीद है, जो डूब कर मरे वो भी शहीद है। ये हदीस और इस जैसी बहुत सारी हदीसों ने भी लोगों को रिलैक्स कर दिया। हर बंदे को शहीद कहना चाहते हैं, इवन वो गैंगस्टर्स, वो बड़े बड़े मजहबी और सियासी जमातों के लीडर जिन्होंने इंसानों की जिंदगियां जीरन की थी, वो मरते हैं तो उनके फॉलोअर्स कहते हैं शहीद फलां, शहीद हो गए, नहीं कह सकते। देखिए ये जो बीमारियों से मरता है, अब आजकल लोग पूछते हैं कोरोना भी तो एक बीमारी है, इससे मरने वाले, और अचानक बीमारी, याद रख लें एक बात, नंबर एक अल्लाह को भूल नहीं लगती, गलती नहीं लगती। तीसरी बात याद रखिए, बुनियादी अकायद उसके सही होंगे तो इनमें से कोई चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, और चौथी बात उसके मामलात। आप पढ़ते हैं कि शहीद अगर कर्जों में डूबा हुआ है तो भी उसका कर्जा माफ़ नहीं होगा, तो बाकी बातें तो पीछे रह गई। और आखिरी टर्म सालेहीन की सायत में थी, सालेह से सालेह मुसलमान, नेक सरिश्त इंसान जिसके हर अमल से इसकी नेकी जाहिर होती हो, पूरी जिंदगी में नेक रवैया रखता हो। इस पर हमने पहले दिन काफ़ी बात की थी। وَمَنْ يَرْغَبُ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ صالحین کا لفظ دیکھیے ذرا، سورہ بقرہ آیت 130۔ اسی میں ہم نے اپنی سیریز جو ٹرپ کی چل رہی ہے اس میں نادان کون لیکچر اسی آیت پہ ہوا تھا، اس میں ذرا سنیے گا۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی چنا تھا یعنی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ وہ لیکچر سن لیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ تو صالحین کا لفظ یہاں دیکھیے کس کے لیے آیا ہے؟ ابراہیم کے لیے۔ سبحان اللہ، جو صالح نہیں ہے وہ پھر ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کچی پکی نہیں کی وہ میٹرک کیسے کر لیتا ہے؟ یہ مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت لیجیے، 4156، قیس بن نبی حازم سے روایت ہے، انہوں نے مرداس اسلمی سے سنا، وہ صحابہ شجرہ یعنی غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے، سفر حدیبیہ میں تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ لکھیے، سب سے پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے، جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے، اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کی اس کے بعد، پھر ردی اور بیکار کھجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہ ہوگی، ان پر قیامت آئے گی۔ قیامت اپنی جگہ ایک عذاب ہے، अल्लाह उसे भले ईमान वालों को ख़त्म कर देगा, नेक लोग उठते जाएंगे, एंड पे तो कचरा रह जाएगा, ट्रैश, जैसे मूंगफली के आखिर में छोटे छोटे दाने रह जाते हैं या खजूरों में कोई लगी हुई खजूरें रह जाती हैं। इसी तरह से अबी दाऊद की रिवायत 4340 अबू सईद खुदरी से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो कोई मुनकर देखे और अपने हाथ से उसे रोक सकता हो तो चाहिए कि इसे अपने हाथ से रोक दे, अगर वो हाथ से ना रोक सके तो अपनी जुबान से रोके, और अगर अपनी जुबान से भी ना रोक सके तो अपने दिल में इसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा। तो ये कोशिशें करते रहेंगे तो फायदा होगा। ईमान का आला दर्जा ये है कि इंसान पूरी जिंदगी इस तरह बसर करे कि वो अल्लाह को देख रहा है, और ईमान का अदना दर्जा ये है कि इंसान पूरी जिंदगी इस तरह बसर करे कि अल्लाह ताला इसको देख रहा है। करने का काम क्या है आपके मेरे? एक मोमिन आदमी को ईमान के किसी एक मरहले पर हरगिज नहीं रुकना, वो हमेशा मेहनत करते हुए इल्म और अमल के जरिए बुलंद दर्जात की तरफ कदम बढ़ाता रहे, सीढ़ियों पे चढ़ने की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये 4 दिन का सेशन पूरा हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।